पति धर्म का पालन करके परस्पर एक से संबंध में होते हैं तब इसको कहते हैं स्वकीय। किंतु वो कृष्ण के साथ में हो तब जगत में हमने कर दिया विवाह हुआ वो हमारी स्वकिया नायिका है ऐसा नहीं होगा, वो तो कृष्ण के लिए ही और उनके लिए है उनकी जो प्रेयसियाँ हैं। इसको थोड़ा सा समझने के लिए देखिए ये स्वकिया किसको कहते हैं। एक राजा थे उनकी परम सुंदरी कन्या है उसका नाम रुक्मिणी है। वो कौन से राजा की लड़की?
भीष्मक नंदिनी।
कौन से देश के?
विदर्भ
के राजा भीष्मक की लड़की थी। उस समय में अपने समय में सबसे सौभाग्यवती गुणवती रूपवती वो लड़की थी। नारद जी से कभी उसकी भेंट हो गई कन्या की, जब वो विवाह के योग्य होने जा रही है भेंट हो गई, नारद जी ने कृष्ण का रूप का वर्णन किया उनके गुणों का वर्णन किया और सुन करके मन ही मन में उसने संकल्प कर लिया जब मैं शादी करूंगी तो कृष्ण के साथ में और किसी के साथ में नहीं। उसके पिताजी माताजी और घर के लोग चाहते थे कि कृष्ण के साथ में शादी हो, किंतु उसका भाई बड़ा प्रतापवान था उसने कहा नहीं होगी शादी, रुक्मिणी की शादी हम शिशुपाल से करेंगे, शिशुपाल सुंदर योग्य वर है। विवाह से दो दिन एक दिन आगे सब तैयारी हो गई विवाह की और शिशुपाल बारात लेकर के पहुंच गया। उसके बारातियों में जरासंध दुर्योधन कर्ण ये कौरव लोग सब भी और लोग सब बड़े बड़े कंस का प्रतिनिधि भी शायद गया होगा। लड़की ने संकल्प कर लिया लड़की की शादी हो गई, संकल्प ही पाले भारत संस्कृति के अनुसार में शादी हो गई। काजे अब कृष्ण सिंह के अतिरिक्त किसी और गीदड़ से मेरी शादी नहीं होगी, नहीं तो मैं प्राण छोड़ दूंगी। और एक ब्राह्मण को भेजा, ब्राह्मण रातों रात में पहुंचा, कृष्ण सभा में बैठे हुए थे और उनको ये पत्र चुपके से दिया। कृष्ण ने पढ़ा और पढ़ करके वहाँ से सभा से निकल आए। कल ही पहुँचना है, रात है आज, कल ही विवाह होने को है। बस साथ साथ में कृष्ण निकले बलदेव जी को आभास लग गया, वो सारी सेनाओं को लेकर के उनके पीछे पीछे कुंडन नगर के लिए चल पड़े। जब पहुँचे लोगों को पता लगा, उसके पिताजी ने देखा जैसे वर में यात्री के रूप में आया है इसके लिए भी ठहरने का स्थान दो, आदर के साथ में उसको भी स्थान दिया। किंतु उन लोगों के कान खड़े हो गए कहीं उत्पात न कर डाले, इसलिए सारी सेनाओं के साथ में घेराबंदी करके रख दिया। रुक्मिणी ने कहा उनके घर का ऐसा रीति रिवाज थी लड़की विवाह से पहले शाम को देवी की पूजा करने के लिए नगर से बाहर ही वो जाएगी, बस लाखों सैनिकों की घेराबंदी में रुक्मिणी को दुल्हन के रूप में सजा करके वहाँ पर पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा। और इतने में कृष्ण कैसे रथ को बीच में पहुँचा दिया और वो पूजा करके जमीन निकल रही थी, इशारा किया वो अपने आप हाथ बढ़ाया, कृष्ण ने भी हाथ बढ़ाया, कृष्ण ने हाथ पकड़ करके रथ में बैठा दिया और घोड़ों की बागडोर इसको सौंप दिया और अपने धनुष बाण लेकर के खड़े हो गए। भीषण रूप से युद्ध हुआ, रुक्मिणी बड़ी कला कौशल से रथ को चलाने लगी। लोगों ने देखा गजा ये देखो तो ये दुल्हन रथ चला रही है। इसके बाद में बलदेव जी आए, भीषण युद्ध हुआ, सबको हरा करके द्वारकापुरी में रुकने को ले गए। विवाह शादी बड़े घटा के साथ में हुई, बड़े उत्सव हुए। उत्सव होने के बाद में विवाह हो गया, सब ठीक ठाक होना। कुछ दिन के बाद में कृष्ण रुक्मिणी के घर में बैठे हैं और उसी समय में रुक्मिणी जी ने सोने का दंड वाला चमर अपने हाथों में लेकर के कृष्ण को बीजन करने लगी और दासियों को वहाँ से हटा दिया, स्वयं सेवा कर रही हैं। कृष्ण बड़े प्रसन्न हैं, वो भी प्रसन्न हैं। इतने में कृष्ण हठात गंभीर हो गए और बोले, ओह मैंने बहुत बड़ा तुम्हारे साथ में बहुत बड़ा भारी अन्याय मैंने किया, मैं तुम्हारे योग्य योग्य पात्र वर नहीं था, तुमने अनजान में हमसे शादी कर ली और हमने भी शत्रु पक्ष के मान को मर्दन करने के लिए तेरे साथ में शादी की, नहीं तो मैं तुम्हारे योग्य नहीं था, केवल तुम्हारा उनका मान मर्दन करने के लिए इसलिए मैंने ऐसे की। तू राजकुमारी, मैं साधारण एक व्यक्ति, तुम इतनी सुंदरी विश्व में, मैं इसका ठीक विपरीत काला कलूठा, तुम गुणों से भरी हुई हो, गुण सागर हो और मैं निर्गुण हूँ, हमारे अंदर में कोई गुण नहीं, इसलिए जोड़ी ठीक नहीं बैठी। मालूम होता है जो तुमको मैंने कष्ट दिया, इसलिए तुम्हारी जिसको चाहती हो तुम, मैं खुद ही तुमसे प्रार्थना अन्न विनय करता हूँ, उसके साथ पास में पहुँचा दूँ और वो तुम्हारे साथ में रहें। सुनते ही एकदम कांप गई, जैसे लता कोई कांप जाती है, कांप गई और हाथ से वो चमर का दंड गिर पड़ा और कटे हुए केले की भांति वो जमीन पर गिर गई। पहले कुछ आंसू दुहकाए, इसके बाद में आंसू भी सूख गया, बस मूर्छित हो गया। कृष्ण ने देखा जैसे ये अच्छा मजाक मैंने किया, ये तो मर गई, तो उतर करके नीचे आए, नाड़ी देखा तो नाड़ी नहीं, एक रुई का फाहा लेकर के देखा जी ये सांस चल रहा है कि नहीं, देखा जी से ये अभी तो कुछ थोड़ा सा चल रहा है, ये भी बंद होने वाला है। कहिए भाई अब उपचार क्या करें, तो जोर से कहना आरंभ किया, अरे मैंने तो तेरे साथ में केवल क्या किया, उपहास किया, मैं नहीं जानता था ये इतनी तुम कोमल हृदय की हो, भला मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। मैंने ये देखा रोज रोज एक साथ में रहने से प्रेम पुराना हो जाता है, इसलिए मैंने कुछ सोचा जब तुम्हारे साथ में कुछ हंसी दिल लगी कर लें तो तुम रूठ जाएगी और उठ करके मान करेगी और हमको दो चार भली बुरी बातें कहेगी, ये सुनने के लिए मैंने कहा है। घर गृहस्थी में तो यही आनंद है, और आनंद क्या है, बच्चों का प्रेम रूपी मधु और पत्नी का स्नेह रूप मधु, अच्छी बड़ी बातें, कभी लड़ाई और कभी प्रेम प्रीति हो जाती है, यही संसार में। तो मैंने इसी के लिए किया। अरे मुझे तो याद है गोपियों को मैं बहुत कुछ ऐसा करता और वो हमको उत्तर में वैसा कर देती और हमको जली काटी सुनाती, धूर्त चोर चोटा सभी कुछ सुनाती और मैं भी प्रसन्न हो जाता, फिर वो भी प्रसन्न हो जाती, तो ये तुम मर गई, ये तो मुझको अनुमान नहीं था, नहीं तो मैं दिल लगी नहीं करता, मैं तुम्हारा वही प्रियतम हूँ, तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा, ऐसे आश्वासन जब बार बार देने लगे तो थोड़ा सा उसमें देखा जैसे अब प्राण का संचार होने लग गया और फिर धीरे 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 कृष्ण ने उठाया, मुख में पानी दिया और उनको फिर उसके बदले में जो जो कहा था उन्हें कहा जी आपने ठीक ही कहा, आप निर्गुण हैं और आपने कहा जो तुमको सभी लोग चाहते हैं, हमको कोई नहीं चाहता, कृष्ण को कौन चाहता है, जो दीनहीन है, कंगाल है, सबसे उपेक्षित हैं, वही लोग चाहते हैं, और तुमको बड़े बड़े राजा लोग शिशुपाल जैसे और सब लोग चाहते हैं। तो आपने ठीक ही कहा, आप भगवान हैं, आप निर्गुण संतों के ही आप उपास्य हैं। साधारण आदमी आपको क्या समझेगा, जगत का कोई भी रंग आप पर नहीं चढ़ेगा। हमारे धर्मशाला में हो रहा है ना, बाहर पर दूसरा कोई रंग नहीं चढ़ेगा, इसलिए आप निर्गुण हैं। इस प्रकार से कह करके और उनको कृष्ण से उन्होंने कहा, और फिर अपने धर्म में लग गई। ये है स्वकिया, और परकिया का क्या बतलाया, कृष्ण से बिना कारण के या कारण के वो उठ जाती हैं, और कृष्ण उनके चरण पकड़ करके मनाते हैं। कृष्ण कभी नहीं कर सकते गोपियों को, तुमको मैंने छोड़ दिया, बल्कि गोपियां कहेंगी ये तुम हमको भूल सकते तो हम भी तुमको भूल गई, तुमसे हमारा नाता क्या है, शादी विवाह थोड़े हुआ, तुम हमको रुपये दे करके हमारे बाप से खरीद लिया है थोड़े, तुम हमको खिलाते पिलाते हो, कपड़े थोड़े देते हो। इस तरह से बातें करती हैं, और उसी से कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं स्वकिया और परकिया दो प्रकार से इस रस का संस्थान है। परकिया भावे अति रसेर उल्लास, रस का उल्लास, आनंद का उच्छ्वास इस परकिया भाव में। सीता जी को रामचंद्र जी ने बिना किसी कारण के छोड़ दिया, त्याग कर दिया। यदि इस जगत में अभी किसी की पत्नी हो, परम पतिव्रता और सब विषय में गुणी हो, और एक व्यक्ति ने उसका अपहरण कर लिया, और चार पांच दिन के बाद में या एक महीने के बाद में वो मिली, तो पति उसको छोड़ देगा, यह अन्याय सरासर है। विवश होकर के वो गई, तो रामचंद्र जी को ये पता नहीं है जो हमारी पत्नी है सब लक्षणों से युक्त हैं, आई आ रही है लंका से, कौन वन, अशोक वन से विभीषण जी लाने गए, लक्ष्मण जी को भी भेज देते तो एक सम्मान की बात होती, लक्ष्मण जी को भी नहीं भेजा, विभीषण जी उनको लाए। विभीषण जी नाना प्रकार के सुंदर सुंदर कपड़े अलंकार इत्यादि लेकर के गए, ये पहले स्नान करके इसको पहन करके तब चलिए पालकी पर, चलिए पालकी पर ले आए। उन्होंने कहा ये नहीं, जब तक अपने पति से नहीं मिलूंगी तब तक ये वस्त्र हम नहीं छोड़ेंगे, और न अलंकार धारण करेंगे न कुछ करेंगे। ये देखिए पतिव्रता भाव, जबकि सेनाओं के मध्य में पहुंची, रामचंद्र जी ने कहा जी पालकी रोको, सब लोगों का कान खड़ा, ये क्यों नहीं, इन बंदरों ने भालुओं ने उनके लिए प्राण दिया है, इनको देखे तो सही, दर्शन इनका करे, बस उनको उतार दिया, मतलब ये नहीं था जे देखे, कुछ मतलब और है, बस उनको रोक दिया, कहा जे पैदल आए, पैदल लेकर के उनको लोग आए। जब आ गई तो कहा अच्छा हुआ, मैंने अपने क्षत्रिय का धर्म निभाया, हमारी पत्नी का अपहरण लंकेश करके ले गया, और मैंने उसके वंश के साथ ध्वंस कर दिया, 1,00,000 पुत्र, 1,25,00,000 नाती, और कुल में एक भी नहीं रहा देने के लिए बाती, ऐसा कर दिया। मैंने अपना प्रतिज्ञा मैंने रखी, और उनका मान मर्दन करके अपनी पत्नी को ले आया, किंतु मैं स्त्री के वशीभूत नहीं, स्त्री के लिए मैंने युद्ध नहीं किया, मैंने युद्ध किया क्षत्रिय के आन के लिए, सम्मान के लिए, इसके लिए नहीं। अब आपकी जहां इच्छा हो तहां चली जा सकती है। लक्ष्मण जी ने कहा ये तो बहुत अनुचित हो रहा है। हनुमान जी ने सिर नीचा कर दिया, प्रभु को आज क्या हो गया, आप प्रभु ऐसे जे किसी की बात नहीं सुनेंगे, किसी की बात सुनने वाले नहीं हैं। हनुमान जी इतने प्यारे हैं, लक्ष्मण जी हैं और सब लोग हैं, और सीता जी से प्यारी कौन होगा, उसकी बात नहीं सुन, किसी की बात। हनुमान जी कुछ नहीं बोले, उनकी पूंछ नीचे हो गई, ऊपर करते हैं ना तो पूंछ नीचे कर दिया और मुख भी नीचा ऐसा कर दिया, उठा नहीं सके। और लक्ष्मण लाला जी एकदम रोष में आ गए, किंतु कुछ कर नहीं सकते। सीता जी ने कहा ओ यदि मुझको पहले ही खबर दे देती तो इतना ये सब करने की क्या जरूरत होती, युद्ध करने की जरूरत नहीं होती, मैं पहले ही आग में भस्म हो जाती और फिर युद्ध की कोई जरूरत नहीं, हमको ले जाने की जरूरत तो पहले बतला देना चाहिए था, बस इतना ही। दूसरे अत्यंत विनम्र होकर के कहा, देखा जैसे अपनी राय कुछ बदलें, हनुमान जी के उनके तरफ में, लक्ष्मण जी के तरफ में देख रही हैं, राम के तरफ में देख रही हैं, और राम कह करके एकदम गंभीर कठोर हो गए। अच्छा विचारो सीता जी का दोष क्या है, क्या दोष, किसी ने क्यों नहीं उनको समझाया, क्यों नहीं समझाया। वशिष्ठ जी भी जब दूसरी बार छोड़ दिया ना तो वशिष्ठ भी नहीं समझा सके, कोई भी उनको नहीं समझाया, वो अपनी बात पर पक्के रहते, जो कह दिया ठीक या बेठी। अच्छा यहां से फिर उनके पिताजी आए और पवन देव आए, अग्नि ने साक्षी दिया सब लोगों ने, नहीं ये सीता जी परम पवित्र हैं, ठीक है ले लिया। लेकर के फिर अग्नि में वो जा रही थी, अग्नि शांत हो गई और अग्निदेव उसमें से निकल करके सीता, ये पतिव्रता का देखो ये कितना बड़ा भारी लक्षण है, पतिव्रत धर्म ही उसका रक्षा कराता है, ये सीता जी के चरित्र में देखा है। इसके बाद में फिर जब वहां पर गए 11,000 वर्ष तक राज्य किया, वहां से लौट करके उसके अंतिम दिनों में सीता जी को उन्होंने त्याग कर दिया एक धोबी के कहने से। वो अयोध्या के प्रतिनिधियों को बुला लेते, अपने जितने राज्य के मंत्री हैं उनको बुला लेते, अच्छा ठीक है नहीं हो तो और ग्रामवासियों को भी, अयोध्यापुरी के वासियों को बुला लिया जाता, और वशिष्ठ जी हैं और उनके ब्राह्मण ये सब मंत्री थे, सबको बुला करके एक मीटिंग करनी चाहिए थी, ये ऐसी ऐसी बात हो रही है क्या करनी चाहिए, ये तो प्रजातंत्र है ना, आखिर जो मन में आए वही कर दे, ये प्रजातंत्र कहाँ हुआ। तो उन्होंने हनुमान लक्ष्मण जी को आदेश दिया सारा जीवन के लिए इनको देश से निकाला करो, हमारे देश में न रहे, ऐसी कठोर आज्ञा दी, और चालाकी चतुराई के साथ में उनको राज्य से बाहर कर दिया। जब वाल्मीकि के आश्रम में के पास में नदी रास्ते से नौका में चढ़ करके जा रहे हैं, पार करके जब वहां पर जा रहे हैं, लक्ष्मण जी बड़े विलाप करने लगे, अब तो इसको कैसे कहूं सीता मैया को, कैसे कहूं कि आपको सदा के लिए जीवन भर के लिए उन्होंने प्रत्याग किया है, उनसे कहा रहा नहीं गया, रोने लग गए। सीता जी ने कहा तुम तो बड़े कोमल हृदय के हो, अरे हमारे तो वो पति हैं उनके लिए मैं नहीं रो रही, तुम एक दिन के लिए भी छूट करके इतना रोते हो। बड़ी मुश्किल से उन्होंने कहा आपको जंगल में सैर करने के लिए मुनियों की पत्नियों से मिलने के लिए नहीं भेजा, आप गहने उपहार और कपड़े जो लाई हैं मुनियों की पत्नियों को देने के लिए उन्होंने इसके लिए नहीं भेजा, ये तो उनकी चतुराई थी, आपको जीवन के सब दिनों के लिए आपका प्रत्याग, और ये कह करके मूर्छित हो गए। सुनते ही अब वो विलाप करने लगा, वाह हमको उन्होंने सारा जीवन के लिए, क्या मेरा दोष है, ठीक है जैसा क्या उन्होंने ठीक किया इसमें हमको कुछ नहीं कहा, उनके आदेश को सिरोधार्य करके वहां पर बैठ करके विलाप कर रही हैं, और उनको छोड़ करके लक्ष्मण जी विलाप करते करते जब शाम को हुई तब वाल्मीकि जी अपने ऋषि अपने आश्रम में जब आए तो किसी के रोने की आवाज आई और वहां पर आए। अरे बड़े करुण स्वर से कोई रो रही है। जब वहां आए देखा तो सीता जी को, अरे आप यहां पर कैसे, क्यों रो रही हैं? सीता जी को पहचानते हैं, क्यों आप यहां पर? तो उन्होंने कुछ घटना सुनाई संक्षेप में और ऋषि ने मन में देखा वो पहले तो रामायण लिख चुके हैं, उनको तो यही घटना होनी है, ये वो तो जानते हैं, अभी लोग उसको पढ़ाना बाकी है, अभी पैदा होंगे। गर्भवती थी जब आई थी तो कितने महीने की गर्भवती थी, शत्रुघ्न जी उसको देख करके आए थे रात में और तब फिर ये मथुरा में आए, बीच में उनके आश्रम में गए थे और जब शायद पुत्र के रूप में होते हुए देखा ना, हाँ पुत्र को होते हुए देखा था लव कुश को, तो वहां पर सीता जी बिलबिला रही हैं, तो उन्होंने कहा बेटी तू रोती है कि चलो हमारे यहाँ रहो, हम तुमको रखें, राम नहीं रख सके, मैं उनके अधीन नहीं हूं, मैं अधीन किसी का नहीं। ब्राह्मण लोग उस समय के बड़े तेजस्वी होते थे और ऋषि लोग, वो किसी में के अधीन नहीं, वो तो प्रभु के अधीन है केवल। रामचंद्र जी रुष्ट होंगे इसका यदि उनको भान रहता तो रखते, और उनके अतिरिक्त और कोई रखने वाला था उनको, किंतु उन्होंने रख लिया, रख करके पालन पोषण पुत्री की भांति करने लग गए। किंतु सीता जी ने एक बार भी नहीं कहा जब मैंने भी राम को छोड़ दिया या उन्होंने मेरे साथ में अन्याय किया है, ये है पतिव्रता धर्म और यह है स्वकीय भाव। गोपियों के लिए चलिए देखिए वृंदावन में ठीक इसके विपरीत, किसी कारण से कृष्ण और राधा जी और गोपियां सब बैठी हैं, हठात कृष्ण के मन में कुछ कुतूहल आया, उन्होंने कहा चंद्रा चंद्रा कहा ना राजा जी की, हमको चंद्रा कहता है? बस तुनक करके मुख फेर लिया और बिगड़ गई, कृष्ण से बोलना छोड़ दिया। थोड़ी देर में कृष्ण ने देखा ये चंद्र का कहा है, इसलिए रुक करके थोड़ा सा क्या कर कहा चंद्रान ने आप ऐसे क्यों हो गई? और सखियाती हंसने लगी और राधा जी बड़ी मान कर रही हैं, जैसे कृष्ण ने बुरा क्या कहा आपको, चंद्रान ने कहा, तो बीच में छेद क्यों कर दिया चंद्रान कह करके क्यों रुक गए, चंद्रान ने एक साथ में क्यों नहीं कहा? अब बिगड़ गई कृष्ण से बोलने, कृष्ण मनाते मनाते हार गए। गोपियों ने बहुत तरह से समझाया ये चंद्रान ने तो बहुत अच्छी बात है, आप तो चंद्र के समान मुख वाली अत्यंत सुंदरी, चंद्र से भी अत्यंत सुंदरी है, इसमें क्या क्या दोष है? ललिता जी ने कहा ये दोष तो नहीं है किंतु कुछ तो दोष हुआ, वो रुक क्यों गए? तो इसलिए इसकी खामी भरनी पड़ेगी, इसका दंड इनको भोगना पड़ेगा। कृष्ण बोले अच्छा मैं दंड भोगने के लिए तैयार हूं, जो कुछ दंड देंगे हम दंड भोग। बतलाइए कहां यहां प्रेम का भाव और कहां वहां पर स्वकीय का भाव? जो बुद्धिमान होगा वही राम के कृष्ण रूप को क्यों नहीं ग्रहण करेंगे? राम में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं, रसेन उत्कृष्टते, रस और शक्ति का केवल ये भाव, बैठो जाओ, केवल शक्ति के तात्म्य, प्रकाश का तात्म्य है। द्वितीय का चांद भी वही है जो पूर्णिमा का चांद है, दोनों में कोई उत्तर अंतर नहीं, किंतु वो पृथ्वी के आड़ से छाया से ढकी हुई है इसलिए नहीं दिखता है, नहीं तो दोनों एक ही है, कृष्ण ही है संपूर्ण रूप में भगवान, किंतु उनका वो भाग कुछ हो जाता। अर्थात ये माधुर्य भाव जहां नहीं है, मर्यादा पुरुषोत्तम वहां पर है, मर्यादा के लिए सब कुछ को पृथ्वी में त्याग कर सकते हैं, इसलिए राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता। राम के रूप में उन्होंने जगत में लीलाएं की, लीला करने के बाद में तब वो विचार करते हैं, मैं गया किंतु मर्यादा में प्रेम को भी मैं भूल गया, प्रेम का आदर नहीं मैंने किया, प्रेम को ठुकराया हमने, अब ऐसा नहीं कर, अब तो ऐसा हमारा कोई हो जिसमें प्रेम की प्रधानता रहेगी, मर्यादा पैरों के नीचे रौंदा जाएगा, दौड़ा पीछे रहेगा। इसलिए उन्होंने पर की अभाव में अपने नित्य परिकरों को लेकर के गोलोक वृंदावन से इस जगत में पधारे। ये 84 कोष की भूमि गोवर्धन, नंदगांव, बरसाना, राधा कुंड, श्याम कुंड, गिरिराज गोवर्धन, ये जितने देखते हैं ये सब वहाँ की चीजें, यहाँ की नहीं है। उस समय आने पर इस ये तदात्म उसमें हो जाता है। तदात्म माने क्या, जैसे लोहे में आग प्रवेश कर जाती है वो यहाँ की भूमि में प्रवेश कर जाती है, उस समय में बहुत सुहावना वृंदावन हो जाता है। आज जमुना में पानी गंदा कचरा, आचमन लेने में भी बड़े बड़े कीड़े मिलेंगे, अभी बरसात है नहीं मालूम हो रहा है, गर्मी के दिन में सूख जाएगी जमुना। सुंदर उपवन उसमें रहते हैं, सुंदर कोयल कुहकती है, मोर नाचते हैं वहाँ, भ्रौरे झंकार करते हैं पुष्प पर, कहाँ ये सब चीजें। वहाँ के लोग परम सुंदर, गोप गोपियाँ और सब, कहाँ अभी देखें। अभी जाएंगे तो मन खराब हो जाएगा मथुरा वृंदावन में, पंडे लोग लूटने की चेष्टा करेंगे, और बहुत से सज्जन हैं कुछ सहायता भी करेंगे, ऐसे भी है सज्जन भी हैं, दुकानदारों के साथ में कोई यदि लग गया ना पंडे, आप दुकान पर जाइए पंडा नहीं बोलता तो भी आपका वो कुछ कंसेशन होता है ना, क्या
कमीशन
वो आपको वो ले लेगा, आप 1 रुपये की चीज लेंगे वो पंडा ले लेगा 8 आना की 12 आना नहीं 4 आना, आपको मालूम नहीं पड़ेगा। ऐसे ही सब चीज वृंदावन वही है, किंतु अभी हम लोग माया के ऊपर में खड़े हैं। कृष्ण की लीला आज भी चल रही है किंतु हम इसकी उपलब्धि नहीं करते, किंतु हाँ सौभाग्यवान लोग वैष्णव के अनुगत्य में भजन करने पर इन चीजों की उपलब्धि कर सकते। इसलिए परम सौभाग्यवान व्यक्ति है सब कुछ छोड़ करके निष्किंचन दीन ही बनकर इन चीजों को पाने के लिए चेष्टा कर, इसके प्रति लोभ। इसीलिए चैतन्य चरितामृत में भी इस कथन का वर्णन किया गया, केवल मात्र ब्रज में है और कहीं नहीं है ये भाव, यहाँ तक बैकुंठ और द्वारका तक में भी, मथुरा तक में ये भाव नहीं है, कुछ कुछ आभास है। जैसे कि इन महिषियों में महाभाव का कुछ आभास है, प्रेम वैचित्य उनमें पाया जाता है। प्रेम वैचित्य क्या, ये सब साधन भजन नहीं करने से नहीं सुनने से समझ में नहीं आएगा जब प्रेम वैचित्य क्या। इसलिए वैसे साधन भजन करने की दिन रात परिश्रम करने की जरूरत है। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी दिन भर बैठे नहीं रहते थे, सोते नहीं थे, क्या करते थे, आप 2 मिनट बैठिए तो एक जगह नहीं बैठ सकते, वो तो कुछ रसीली कथा हो रही है इसलिए आज यहाँ पर सब लोग उद्ग्रीव होकर के सुन करके बैठे हैं, नहीं तो 5 मिनट क्या, 2 मिनट भी बैठना बड़ा भारी मुश्किल है, मन को एकाग्र करना भी बड़ा मुश्किल। अभी देखिए तो बिना परिश्रम के मन एकाग्र हो गया है कि नहीं, ऐसे जिनके लीला कथाओं में इतनी शक्ति है वो सब उनकी लीलाएं यदि हो रही वो उसमें कितनी शक्ति होगी। ब्रज बधुगनेर ए भाव निरवधि, तार मध्य राधार भाव भावेर अवधि। ये जो बतलाया केवल ब्रज बधुओं में ही और किसी में नहीं, गोपियां तो बहुत हैं, कन्याका हैं, माताएं हैं और सब लोग हैं,
नगोड़ा है, खोदोड़ा
नहीं, माताएं हैं, दासियां हैं और कितनी तरह की हैं सब, किंतु ब्रज बधुएं और उसमें भी राधा के प्रति एकांतिक अनुराग जिसका है उन्हीं लोगों में ये भाव पाया जाएगा और कहीं नहीं मिलेगा। कृष्ण के लिए विवाह की भी अपेक्षा नहीं रहती, मर्यादा का भी ध्यान नहीं रहता, लोग मर्यादा पति पति सब कुछ को छोड़ करके, पुत्रों का स्नेह छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके कृष्ण की मिलने की तीव्र उत्कंठा से मुझसे मिली, यह ब्रजवधुओं के अतिरिक्त कहीं नहीं देखा। और उसमें भी राधा भाव की अवधि है, ये गोपियां क्या हैं, ह्लादिनी जो स्वरूप शक्ति है, स्वरूप शक्ति की ह्लादिनी जो वृत्ति है उसके ये स्वरूप हैं सब। नहीं समझ में आएगा कहने से ह्लादिनी किसको कहते हैं, स्वरूप शक्ति किसको कहते हैं। निरंतर वैष्णव के मुख से सुनने से कुछ आभास आए, वो भी भजन नहीं करने से और केवल सुनने से भी नहीं होगा। वैसा भजन करे, मान अपमान क्रोध और संसार के जितने भी कामनाएं हैं सबको छोड़ करके, स्वर्ग मोक्ष वैकुंठ की भी कामना छोड़ करके केवल मात्र कृष्ण के प्रति अनुराग हो, तो ऐसा हो सकता है। इसलिए इसका साधन भी ऐसे ही है, अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माध्यानावृतम अनुकुलेन कृष्णानुशीलन भक्ति उत्तम श्रीमती। तो ये गोपियां क्या हैं, लक्ष्मी जी की भी लक्ष्मी है, जस क्या वो निज रूप तया कला आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी ताभिर एवं निज रूप तया कला। कृष्ण का रूप कैसा है, सच्चिदानंद में, उनकी कला माने शक्ति, उनकी ये निजस्व शक्ति है, निज रूप तया अपने रूप के समान। कृष्ण का रूप कैसे, सच्चिदानंद है। ये गोपियों का रूप क्या है, सच्चिदानंदमय, और कृष्ण की और शक्ति में भी, स्वरूप शक्ति में भी ह्लादिनी शक्ति। इन लोगों के साथ में गोलोक में नित्य विलास करते हैं, इसलिए गोपियां साधारण नहीं। इसलिए कहते हैं उनमें भी राधा जी का भाव उनमें अवधि तक है, सीमा तक है। सभी गोपियां कृष्ण को आनंद देती हैं और कृष्ण उनको आनंदित करते हैं, किंतु गोपियां में जितने भी भाव हैं सबको मिलाकर के एक श्रीमती राधिका में ही वो सब भाव नहीं है। इसलिए राधिका के द्वारा उन सब भावों को कृष्ण प्राप्त कर लेते हैं। प्रौढ़ निर्मल भाव प्रेम सर्वोत्तम कृष्ण माधुर्य रस आस्वाद कारण, जिसमें ऐसा ही अनुराग हो, स्वरूप शक्ति की ह्लादिनी वृत्ति यदि किसी के हृदय में संचार करे, कैसे करेगी, उनके परिकरों के द्वारा यदि प्रवेश करे, कौन सा स्वरूप शक्ति की वृत्ति हो, वो भी ह्लादिनी सार और संबित का, यदि वो हमारे हृदय में संचरित हो तो प्रभु देखते हैं कि वही प्रेम जो गोपियों में है वो इधर आया है, तो उसको लेकर के आस्वादन करके प्रीत हो और उसको भी आनंद देंगे, अपने भी आनंद। जब तक यह भाव नहीं आएगा, जिसको कहते हैं प्रौढ़ भाव निर्मल भाव, तब तक कृष्ण को कोई भी प्रसन्न नहीं कर सकता। और यह प्रौढ़ भाव राधा जी में अपनी सीमा तक है, जो और किसी में नहीं है। यही यदि उसका कोई फ्रैक्शन भी हो, उसका आभास भी हो, तो माधुर्य कृष्ण का जो माधुर्य है आस्वादन कर सकता, अभी हमारे अंदर नहीं इसलिए नहीं कर सकता। महाप्रभु जहां कृष्ण नाम किया राधा भाव लेकर, बस मूर्छित हो जाते, हा कृष्ण करो। हम लोगों को होता है नहीं, क्यों, अभी साधन उतना नहीं है जैसे कि वो भाव आ जाए। कृष्ण को आस्वादन करने के लिए माधुर्य प्रेम होना चाहिए, प्रेम तो है नहीं, इसलिए न तो कृष्ण ही हमारे पास आएंगे, न हम उनका आस्वादन कर सकें। इसलिए प्रेम के माधुर्य आस्वादन का कारण क्या है, वह प्रौढ़ निर्मल भाव जो गोपियों के हृदय में है, वो यदि जीवों के हृदय में भी संचरित हो जाए, इसलिए उसको संचार करने के लिए अपने को योग्य बनाना पड़ेगा। अतएव से ही भाव अंगीकार करी, इसलिए राधा जी का भाव अंगीकार करके साधिले निज वांछा गौरांग श्रीहरि, उन्होंने अपने मनोकामनाओं की साधना की, मैंने प्राप्त किया, आस्वादन किया ये। इसीलिए हमारे श्रील रूप गोस्वामी ने स्तवमाला में उन्होंने कहा है, सुरेशानं दुर्गम गति यतशयेन उपनिषदं मुनिनं सर्वस्वं पटन पटलीनं मधुरिमा विनिर्यास प्रेम्नो निखिल पशुपालं भुजदृशा स चैतन्यः किं मे पुनरपि दृशोर्यास्यति पदम्। सुरेशानं दुर्गम अतिशयेन गति अतिशयेन उपनिषदा, सुरेशानं दुर्गम, दुर्गम माने बलदेव विद्याभूषण के टीका में बतलाया दुर्ग, दुर्ग माने जो जिसमें
गमन करना,
जिसमें छिप करके शत्रुओं से रक्षा की जाती है और शत्रु उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता, इसलिए सुरक्षित स्थान का नाम चेतन महाप्रभु के चरण कमल। सुरेशानाम, सुरेशान माने ब्रह्मा और शंकर, ये सब देवर्षि, देवों में ऋषि जो है नारद, इन लोगों के शरण के स्थान है। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने सरल सहज रूप में लिखा, वो भी जरूर पढ़े होंगे किंतु उस अर्थ को नहीं लेकर के उन्होंने किया, सुरेशानाम दुर्गम, ये जो प्रेम है जिसको वो लेकर के आए हैं महाप्रभु जी, महाभाव की अंतिम मादन मोदन दशा को लेकर के आए हैं, सुरेशानाम दुर्गम उनके लिए दुर्गम है, इनके लिए पाना और चिंतन करना भी दुर्गम है, स्पर्श करना भी दुर्गम है, ये दुर्ग का अर्थ, क्योंकि और शब्दों से इसका सामंजस्य करना है। गति अतिशयेन उपनिषदान, उपनिषदों के लिए कुछ कुछ गति स्वरूप है, अर्थात तो उपनिषद लोग कुछ कुछ जान सकते हैं, कौन गोपाल तापनी इत्यादि, सब नहीं, इनके लिए तो दुर्गम एकदम है ही संभव नहीं, और उपनिषदों में कुछ के लिए ये थोड़ा सा गति उनकी होगी, उसमें गति होना माने क्या, उसको जानना। मुनि नानुसार अवस्वम, मुनि नारद प्रभृति जैसे मुनि लोग हैं उनके लिए ये सर्वस्व है। अब प्रणत पटली नांग मधुरिमा, जो कृष्ण के चरण में अनुगत हैं, ऐसे शरणागत जो भक्त हैं वो उनके लिए मधुर को देने वाला, मधुर भाव को देने वाला है ये। और विनिर्जास प्रेमनो निखिल पशुपालंबुज दिशा, निखिल पशुपाला अंबुजा अंबुज दिशा, पशुपाल एक होता, पशुपाल माने नंद महाराज इत्यादि, या कृष्ण सिदाम सुदाम वसुदाम स्तो कृष्ण लवंग अर्जुन उज्ज्वल इत्यादि, ये पशुपाल है। और पशुपाला कौन है, गायों को दुहने वाली, गायों को पालन करने वाली कौन है, ये गोपियां है। इसलिए गोपियों के अंबुज दृशान, दृशान माने नयन है, नयनों के क्या है, विनिर्जासा प्रेम, उनके आंखों में जो प्रेम बसा हुआ है, प्रेम की जो माधुरी है जिसे कृष्ण को भी चित्त को हरण कर लेती हैं, उसका भी रस का निर्जास है ये, कौन महाप्रभु जी के भाव को बतला रहे हैं, आगे बतलाएंगे नहीं, सचैतन्य वो जो चैतन्य महाप्रभु, कैसे गोपिया का रस निर्जास कैसे हुआ, महाभाव की अंतिम दशा रसराज महाभाव, कृष्ण में रसराज और गोपियों का भाव हुआ महाभाव, उसमें भी मादन मोदन दोनों को एक साथ मिला करके, खूब मिला करके अच्छी तरह से पानी दे करके एक कर दो, या गला करके एक करके कपड़े में छान करके निर्जास बना दो, ये निर्जास कौन है, स्वयं महाप्रभु, यही महाप्रभु जी सुरेशानाम दुर्गम, दुर्गम। और उपनिषदों के लिए बहुत थोड़ी सी गति उनमें, मुनियों के सर्वस्व और प्रणत भक्त जो दास भक्त हैं उनके लिए मधुरिमा, और गोपियों के ये प्रेम के निर्जास चैतन्य महाप्रभु हैं, वो कब हमारे आंखों के सामने में प्रकटित होंगे।
ये किस लिए बतलाया? महाप्रभु जी जो आए हैं रस निर्यास करने के लिए, उसको हमारे रूप गोस्वामी ने आज यही तक रहे
ब्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमा
तवैव
कृष्ण के प्रति प्रणय कैसा अद्भुत है जिसमें कृष्ण वशीभूत हो जाते हैं, ये कहने का तात्पर्य इसलिए प्रणय महिमा उनकी कैसा उनका उनके प्रति प्रणय है। राधाया प्रणय महिमा की दृशो वा अनया एव अर्थात राधिका या एव राधिका के द्वारा अन्याय अस्वादो जेनाद्भुत मधुरिमा की दृश्य और अनया राधिकाया राधिका के द्वारा कृष्ण की जो मधुरियाँ हैं चार प्रकार की स्पेशल और सब मधुरियाँ हैं किंतु उसमें से चार माधुरी रूप गुण वेणु और ये माधुरी इसके अतिरिक्त प्रेम की माधुरी स्नेह की माधुरी स्नेह मान प्रणय राग अनुराग विशेष करके महाभाव की माधुरियाँ ये कैसी हैं कृष्ण की, ये मत समझो जे आश्रय में ही केवल ये भाव हैं। कृष्ण में राधा जी में स्नेह है बढ़ रहा है ना, या गोपियों में या आश्रयों में जीवों में, किंतु साथ साथ में कृष्ण में भी स्नेह है अपने आश्रय के प्रति। कृष्ण का भी महाभाव है आश्रय के प्रति और आश्रयों का कृष्ण के प्रति महाभाव है। तो यहाँ कह रहे हैं कि राधा जी कृष्ण की इन माधुरियों को विलास माधुरियों को इन माधुरियों को जो आस्वादन करती हैं वो कैसा माधुरी, जिसलिए कि कृष्ण को भी अपनी माधुरी आस्वादन करने का लोभ हो जाता है। ओह मैं राधिका होती विदग्ध माधव में जैसा नहीं राधिका ही वो राधिका की भांति अपनी माधुरियों को कैसे आस्वादन उसमें क्या है आस्वाद वो जिन मधुरिमा की दृशवा मदीय सौखन चाश्या मद अनुभवत मद माने हमको अनुभव करके राधा जी को अर्थात तो हमारी माधुरियों को ग्रहण कर उनको कौन सा सुख प्राप्त होता है जिसे एकदम महाभाव की स्थिति में पहुंच जाती हैं और उसमें अष्ट सात्विक 33 प्रकार के व्यभिचारी अनुभव और सात्विक इत्यादि भाव महाप्रलय मूर्छा तक ये हो जाता है जो और किसी में नहीं देखा जाता। इन तीनों माधुरियों को कृष्ण आस्वादन करने के लिए राधा जी का भाव ग्रहण करके सची के गर्भ में पूर्ण चांद की भांति अब राधाया प्रणय महिमा के श्लोक में उनको अब बतला करके अब विशेष रूप से उन्हीं को बतलाने के लिए भूमिका अभी तक किया। ये चौथा श्लोक। पांचवा श्लोक है राधा कृष्ण प्रणय विकृति लादिनी, इसी की यह व्याख्या करना चाहते हैं। इसी के लिए भूमिका में अभी तक उन्होंने बतलाया कि युग धर्म स्थापन करना महाप्रभु जी का कार्य नहीं, नाम प्रचार करना ये भी उनका युग धर्म है, ये भी नहीं। वो अनर्पित चरिं चिरात, ये जो श्लोक में जिस प्रेम को दान करने के लिए कहा गया है, ये हेतु है उनके आने का, किंतु प्रधान हेतु नहीं है, क्योंकि उनका असल स्वरूप है वो रसिक शेखर है, इसलिए रसास्वादन का रस लोलुप है, ये उनका अपने स्वरूप का कार्य है। और स्वरूपानुबंधी गुण का गुण है करुणा, ना? ये करुणा को देने के लिए क्या चीज, उसी का एक कण देने के लिए, उसी की शोभा संपत्ति देने के लिए, किस चीज का, उन्नत उज्जवल रस देने के लिए, जो जीव स्वरूप के लिए अधिकार है उस चीज को देने के लिए, वहां तक इस चीज को देने के लिए प्रेम वो जगत। बिना प्रेम के कृष्ण के स्वरूप की उपलब्धि नहीं होगी और अनुभूति भी नहीं होगी और रसास्वाद भी नहीं होगा। प्रेम नहीं है, कंस ने उनको देखा, कंस के अंदर में प्रेम नहीं, उसमें विषय प्रेम है, मोह है, अज्ञान है, काम है, इसलिए कृष्ण को देख करके उसे आनंद नहीं हुआ, क्रोध उफन पड़ा। दुर्जन